साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं ग्राम वाणी से दिनकर पातुकर। आज 25 जनवरी अर्थात राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और इस अवसर पर हमारे साथ भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार गांधीवादी लोहियावादी विचारक हमारे साथ रूबरू होने जा रहे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी अभियानों के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्षरत है। ऐसे हमारे बीच आज मोबाइल वाणी के मंच पर आमंत्रित है आदरणीय रघु ठाकुर जी। नमस्कार ठाकुर साहब
जी। नमस्कार दुर्गा जी।
ठाकुर साहब, हम आपसे आज ये जानना चाह रहे, क्योंकि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और अभी लोकसभा के चुनाव भी संपन्न होने जा रहा है। कई नए मतदाता है, कई पुराने मतदाता है, तो हम आज इस अवसर पर जानना चाह रहे कि एक मतदाता को किस तरह से होना चाहिए, उसने अपना मतदान किस तरीके से करना चाहिए।
देखिए, एक तो दिनकर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतदाताओं के लिए जो मतदान की सुविधा के हिसाब से कुछ नियम बनाए गए हैं, इनको कभी कुछ और विस्तार देना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि हर चुनाव के पहले समाचार छपता है कि साहब ये आदेश दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव के अधिकारी के द्वारा कि जो उनके कर्मचारी हैं वो जाएंगे और जाकर के मतदाताओं के बारे में सूचना प्राप्त करेंगे, उनके वेरीफाई करेंगे। परंतु इसमें अक्सर बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं। अब जैसे मैं खुद अपना अनुभव आपको कह सकता हूँ कि हमारे पास में है, हमारे घर पर, यह जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ पर एक बार भी कोई मतदान चुनाव अधिकारी या चुनाव कार्यालय का व्यक्ति नहीं आया पूछने के, भाई कि आपका मतदान है कि नहीं है या क्या है, क्या कोई परिवर्तन नहीं है, कोई पूछ नहीं आया। तो ये एक केवल औपचारिकता होती है, जो कर्मचारी नीचे के हैं वो कहीं जाते नहीं, या फिर वो भी दलीय आधार पर बटे हुए होते हैं, तो जो जिस दल का पक्षधर होता है वो उतने के लिए वहाँ दुरुस्त करता है, बकाये पर नहीं करता है। तो मेरा कहना इसमें यह है कि एक तो चुनाव आयोग को ये व्यवस्था करना चाहिए कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए या नाम कटाने के लिए या कोई परिवर्तन के लिए, पते के परिवर्तन के लिए एक ऑनलाइन सुविधा हो कि उस ऑनलाइन सुविधा से या व्यक्ति या कोई मतदाता अपने परिवर्तन करा सके। दूसरा जो है कि अभी सरकार ने या चुनाव आयोग ने कुछ व्यवस्था इस सुविधा प्रदान की है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग अपने घर से मतदान कर सकते हैं। घर से मतदान करने की जो सुविधा है इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, इसको महिलाओं के लिए देना चाहिए। इसके लिए 60 साल के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके परिवारों को देना चाहिए और इसकी प्रक्रिया को भी थोड़ी और सरल बनाना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो ये दो सुविधाएं तो ऐसी हैं कि जो सुविधाएं मतदाताओं को अभी दी जाना चाहिए। फिर आता है सवाल कि मतदाताओं का जो मतदान करना है, तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो मतदान केंद्र होते हैं उन मतदान केंद्रों के ऊपर भीड़ काफी मचती है और उस भीड़ के चलते कई बार बहुत सारे मतदाता ऐसे भी होते हैं कि जो जाते हैं खड़े होते हैं फिर उठ के हम क्या करें चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ये भीड़ कम कैसे हो, इसका इलाज क्या हो? इसका एक तो इलाज हो सकता है कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और उसमें मतदाताओं की संख्या को सीमित किया जाए ताकि लोगों को लाइन लगे लंबे से खड़ा ना होना पड़े। ऐसा कुछ प्रयास हो कि 10-15 मिनट के भीतर में एक व्यक्ति अपने मतदान को देख के आ जाए। मगर ये जो घर से मतदान की सुविधा है इसको कुछ और उम्र तक बढ़ाएंगे तो फिर इसका एक परिणाम ये भी मिल सकता है। और मतदान सुरक्षित हो और मतदान निष्पक्ष हो इसकी भी आवश्यकता है, तो इसके लिए भी अभी चुनाव आयोग के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। अब जैसे आजकल ये बहुत चर्चा चल रही है ईवीएम को लेकर के, अब ईवीएम के साथ में वीवीपैट रहता है और वीवीपैट पर दिखाया जाता है कि भाई कितने कि हमने वोट किसको दिया है। अब कुछ लोगों ने कहा कि साहब उस वीवीपैट की रसीद भी मिलना चाहिए। वीवीपैट के दिखाने का समय कुछ बड़ा है ये तो संभव है, उचित हो सकता है। रसीद में एक खतरा भी है जो मुझे लगता है, वो खतरा ये है कि जो मतदाता रसीद लेके आएगा, अब मान लीजिए किसी इलाके में कोई एक दबंग व्यक्ति है जो शराब बंटवा रहा है, पैसे बंटवा रहा है, तो वो मतदाता से कहे कि तुम वो रसीद लाके हमको देना, हम देखेंगे तुमने वोट हमको दिया कि नहीं दिया। तो ये मतदान का एक प्रकार का दुरुपयोग भी इस ढंग से हो सकता है और एक प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रभाव के मतदान हो सकता है या दबंगों के आधार पर दबाव में मतदान हो सकता है। तो इस खतरे को भी देखना पड़ेगा। तो ईवीएम और वीवीपैट के दोनों खुशी कैसे जोड़े जाए इसको देखना पड़ेगा। अभी ये चर्चा चली कि साहब ईवीएम को बंद कर देना चाहिए और ईवीएम में गड़बड़ियां हैं या ईवीएम को हैक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इस पर जरूर मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना समझ है कि मैं मानता हूँ कि ईवीएम चुनाव परिणामों को बहुत ज़्यादा कोई ईवीएम के अंदर कोई प्रभावित नहीं कर सकता, जो मैं मानता हूँ। हमारे जो विपक्षी मित्र लोग हैं जो कह रहे हैं बार बार, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि एक तीन राज्यों में साहब हम इस पार्टी को जिताएंगे और दूसरे में नहीं जिताएंगे, और उसका आप आधारे बताएंगे कहेंगे साहब कि नहीं ये तो इसलिए कि उनको प्लान किया है कि हमें तीन राज्य जिता देना है, तो तीन राज्य क्यों जिता देना है आपके लिए, इसमें क्या वजह, इसकी वजह क्या है। दूसरी बात यह है कि जो प्रत्याशी जीत हार रहे हैं, जो 50-50 वोट से या 100 वोट से या 150 वोट से सरकारी पार्टी के भी लोग हारे हैं, तो वहां पर ईवीएम ने क्या किया, वहां कैसे ईवीएम की पाई। तो ये मुझे ईवीएम की शिकायत बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगती है, और हाथ से अब मतदान करने की स्थिति थोड़ा कठिन जाएगी क्योंकि उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है और लगेगा। अब अमेरिका वगैरह में चर्चा आई है कि वहां पर भी हाथ से मतदान होता है, जो पद्धति होती है बैलेट का मतदान पत्र होता है, और परंतु उनकी आबादी में और हमारी आबादी में बड़ा फर्क है। अब अमेरिका की आबादी आज 30-32 करोड़ की आबादी है, जहां मतदाता मुश्किल से 18-20 करोड़ हो सकते हैं। हमारे यहाँ मतदाता जो हैं वो आज करीब करीब 90 करोड़ से ऊपर और 1 अरब के आसपास पहुंच रहे हैं। तो इसमें जो समय है, इसमें जो परेशानियां होंगी, ये भी कोई कम नहीं है, ये बड़ा अनंत सिलसिला जो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में कुछ ऐसा विश्वस्त तरीके हो जाना चाहिए। अब उसमें उनका कहना ये है कि भाई जो उसकी मतदान की जो दिखाते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, उस मतदान को दिखाने वाले का जो होता है तो वो समय कम होता है। एक तो रास्ता निकल सकता है कि साहब उसका समय थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, अगर मान लो अभी उसका समय 10 सेकंड का है तो आप 30 सेकंड कर दीजिए, आधा मिनट कर दीजिए, भाई देख लीजिए। तो अगर मतदान केंद्र बढ़ा दिए जाएंगे और आज एक मतदान केंद्र पर औसतन मान लीजिए कि 1000 मतदाता या 500 मतदाताओं की सीमा रख दी जाएगी, तो आधा मिनट के हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो पूर्ति हो सकती है। क्योंकि आधा मिनट अगर एक मतदाता को लगता है तो उसमें आप 1 घंटे के भीतर में मोटा मोटी तौर पर 120 को की वोटें हो जाएंगी, तो 8 घंटे के 10 घंटे मतदान के समय में आपका बराबर 1000 मतदान का काम पूरा हो जाएगा। तो एक तो एक भी इसका रास्ता हो सकता है। दूसरा यह है कि जो वीवीपैट है उसकी रसीद भले ना दें, इसलिए ना कि भाई उसका दुरुपयोग ना हो, परंतु वो रिकॉर्ड जो है वो चुनाव आयोग रखे और उसको पर्ची के रूप में भी रखे, ताकि बाद में जब मतगणना हो उस मतगणना के समय उसका इस्तेमाल हो सकता है। आप मतदान की जो पर्ची है पर्ची इनको ना दें, पर मतगणना के समय मशीन की मतगणना के साथ साथ में उस जो पर्ची मिलेगी उस पर्ची की भी मतगणना हो जाए, ये भी एक नियम बना सकता है, इससे कुछ लाभ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे सुझाव हैं जो इस पर करना चाहिए। हाँ दिल करिए, हेलो
जी, आपने बहुत कम समय में सारगर्भित बातें रखी और निश्चित ही ये आज के वर्तमान समय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज 25 जनवरी अर्थात मतदाता दिवस के अवसर पर आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से मतदान करें।
मतदाताओं से मैं कहना चाहूंगा कि मतदाताओं के लिए अपने वोट का इस्तेमाल नंबर एक, अपने देश के भविष्य के लिए, दुनिया के भविष्य के लिए और समाज के भविष्य के लिए करना चाहिए। नंबर दो, मतदाताओं को अपने वोट का इस्तेमाल अपने खुद के जो सुविधाएं हैं, जो विकास की जरूरतें हैं और अपने समाज का और देश का कैसा ढांचा बनाए, इसको क्या करना चाहिए। नंबर तीन, मतदाताओं को अपने वोट को शराब में, पैसे में, जाति में, धर्म के आधार पर नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रत्याशी की योग्यता और दलीय विचारधारा के आधार पर उनको अपने मतदान के लिए करना चाहिए। और इन निजी आकर्षणों से लोगों से मुक्त होना चाहिए। नंबर चार कि मतदान के लिए हमें कोई प्रेरित करे इसकी आवश्यकता नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मतदान करना है क्योंकि मतदान हमारे भविष्य के लिए है, मतदान हमारे आगामी समय के लिए है। इस दृष्टिकोण से लोगों को मतदान करना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारे लिए कहीं अनुकूल प्रत्याशी नहीं है तो हम नोटा के लिए वोट दे सकते हैं। हालांकि एक बात जरूर मैं चाहूंगा कि चुनाव आयोग को सुधार करना चाहिए इसमें, नियम में। और अगर नोटा के लिए अन्य प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां पर दोबारा चुनाव हो इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये मैं मतदाता से कहना चाहता हूँ।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने मोबाइल वाणी के मंच पर रूबरू होकर मतदाताओं के प्रति अपना संदेश तो दिया ही, वहीं शासन प्रशासन और चुनाव आयुक्त के लिए भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
दिनकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इसलिए भी देते हैं भरोसे कि आप लगातार ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को उठाते हैं और उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपकी एंकरिंग में और टीवी की एंकरिंग में बड़ा फर्क है। टीवी वाले एंकर जो होते हैं वो बोलते कम है, वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। और आपके हिसाब से अच्छा ये है कि आप पूरा सुनते हैं और पूरा वक्त बोलने वाले को देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।